مشکل الفاظ کی وضاحت. سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 یو جیبو کا عین جیم با عجبا, اس کے معنی ہیں بھانا, اچھا لگنا, بھانا اچھا لگنا عجیب بھی اسی سے ہے. عجیب جیسے کوئی چیز آپ دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ بڑی ہی عجیب لگتی ہے. پھر لفظ ہے حیاتی. حیات جو ہے ہا یا حیون سے ہے, زندگی کو کہتے ہیں. آیت نمبر 204 میں الد الخصام, یہ اہم لفظ ہے. الدو اس کا روٹ ہے لام دال دال, سخت جھگڑالو آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کی بات نہ مانتا ہو, اور اس کی جمع ہے لد. لد اس کی جمع ہے. اصل میں الدو جو ہے وہ شدید اللد جو ہے وہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کی گردن کا پہلو بڑا سخت ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ گردن ہم دائیں بائیں آگے پیچھے موڑتے ہیں نا, اور اگر سخت ہو تو پھر کیا ہے کہ اس کو ہم موڑ نہیں سکتے. تو یہ جو ہے کہ الدو پھر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کے ارادے سے پھیرا نہ جا سکے, جو اس کی رائے ہے اس کا ارادہ ہے اسے ہٹا نہ سکے. تو الدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے سخت کے لیے, سخت. الخصام خا سواد میم خصم, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جھگڑے کے لیے. اور خصما جھگڑا کرنا, اور خصام ہے جھگڑالو. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ جھگڑے کے لیے پیچھے جدال بھی پڑا ہے. تو اصل میں قرآن میں جھگڑا کرنے کے لیے 8 لفظ آئے ہیں, اور ایک تو اس میں حاجہ ہے, حجت بازی کرنا, یہ آپ پڑھ چکی ہیں. دوسرا جدالہ, یہ بھی آپ پڑھ چکی ہیں. تو جو حجت بازی ہوتی ہے دلیل سے جھگڑا کرنا, اور جو جدالہ یا جدالہ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ رسی کو مضبوط بٹنا, تو جھگڑا کرنے والا جو ہے وہ دوسرے کو اپنی رائے سے جو ہے وہ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے رسی کو جو ہے وہ پیچ دیتے ہیں نا, تو اسی طرح جھگڑے میں اپنی رائے سے کسی کو جو ہے وہ ہٹانا. اور آج کے سبق میں آپ پڑھ رہی ہیں لد. تو لد کا لفظ بھی جو ہے یہ جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور شدت الخصومت, سخت جھگڑالو آدمی, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں رٹے خور, جو اپنی بات کے لیے شور مچاتا جائے اور دوسرے کی بات جو ہے وہ سنے ہی نہ. اور پھر اسی میں ایک اور لفظ جیسے ہے الخصام, تو یہ بھی جھگڑے کے لیے آتا ہے. اچھا خصم کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ اصل میں ایسا جھگڑا یا مقدمہ جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں. جیسے ایک جھگڑا کرنے والا ہے اور ایک سے جھگڑا ہو رہا ہے, تو اب جن کا بھی آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں جو ہے نا وہ کسی ایک چیز پر دعویٰ کر رہے ہیں, کوئی ایک چیز ہے جس پر دونوں کا دعویٰ ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے. تو ابھی تک آپ نے جو 4 لفظ پڑھے ہیں اس میں حاجہ حجت بازی اس کا 3 درجہ ہے, جدلہ کا 4, اور خصم جو ہے اس کا 6, اور لد جو ہے نا اس کا 7 درجہ ہے. الد الخصام. پھر فرمایا لیوفسدا فسادا فا سین دال, اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے فساد کرنا, فساد پیدا کرنا. اور یہ فساد جو ہے یہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے, باطنی بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کے فساد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگ اپنی زبان سے فساد کرتے ہیں، بعض اوقات قتل کرتے ہیں، تو قتل و غارت کے ذریعے جو ہے وہ سوسائٹی معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وَيُهْلِكَ هَلَكَ ہَا لَامْ كَاف، اس کے معنی ہے ہلاک کرنا، مارنا. الْحَرْث ہَا رَا سَا، یہ کھیتی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے زمین میں بیج ڈالنے اور اس کی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر بیج میں بیج کو زمین میں ڈال رہے ہیں اور زمین کو کھیتی کے لیے تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے. جیسے حارث، حارث جو ہے یہ کسان کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کھیتی کے لیے بھی اور بیج ڈالنے کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہارا سا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے آپ دیکھیں لیوف سدا کے بعد الفساد، یہ اسی کی فیملی کا جو ہے وہ لفظ ہے، تو دونوں جو ہے یہ آپس میں جو ہے وہ ملتے ہیں. کھیتی کے بعد آپ دیکھیں تو نسل، نون سین لام، نسل نون سین لام. ویسے تو آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اس کی نسل جو ہے وہ کافی ہے، تو نسل کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے اور نسلہ کا لفظ جو ہے یہ دوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے تو دراصل اس کے معنی کیا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو نسلہ کے معنی ہوتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف دوڑنا، تیز چلنا، ایک چیز سے دوسری چیز آہستہ آہستہ نکالنا. تو اسی طرح اولاد جو ہے ایک سے جو ہے وہ، جیسے ایک باپ ہے پھر اس کا بیٹا پھر پوتا پھر پڑپوتا، تو اسی طرح جو ہے ایک سے دوسری چیز نکلتی چلی جاتی ہے. آیت نمبر 206 میں المحاد لفظ استعمال ہوا ہے، میم ہا دال، اور یہ کہتے ہیں ٹھکانے کو، گہوارا، ٹھکانہ. زمین کے لیے بھی آتا ہے، پنگوڑے کے لیے، جھولے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یشری، شین را یا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 207، یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابتغاء، باغین یا، اس کا روٹ ہے چاہنا، طلب کرنا. اور جیسے باغین یا بھی ہے اور باغین واو بھی ہے، اور یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی اچھی چیز کو چاہنا یا کسی پھر بری چیز کو چاہنا. ابتغاء، مرضاتی، رادوات و، رادوات یا، یہ جو ہے وہ رضا، خوشنودی، رضا مندی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. رؤوفن، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، را حمزہ فا، اور اس کے معنی ہیں نرمی کے. اور ایسے شخص کے لیے رافت لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کا دل پگھل آئے اور پھر وہ سوچے کہ اس کو میں مصیبت سے جو ہے وہ کیسے نجات دوں، مصیبت سے اس کو کیسے نکالوں. تو آپ پیچھے پڑ چکی ہیں لرؤوف اور رافت، رؤوف، مہربانی، ترس کھانا، کسی کا دکھ دیکھ کر جی بھرانا اور اس کے دکھ کو دور کرنے کی فکر کرنا، ہر طرح یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. بالعباد، یہ جمع ہے یہاں پہ، اور عبد واحد کے لیے آتا ہے. ادخلو، دخلا، داخل، خالام، دخلا، داخل ہونا، اور ادخلو یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. سلم، سین لام میم، سلم سلامتی کے لیے آتا ہے، یا اسلام اور السلام علیکم. تو سلامتی جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ جیسے اسلام میں جو داخل ہو جائے تو وہ سلامتی میں داخل ہو گیا. اور اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے وہ آگے جو ہے جھکا دینا. کافتن، یہ نیا لفظ ہے، اس کا روٹ ہے کافافا، हाथ की हथेली को कहते हैं। आप उर्दू में भी कहती हैं कि मेरी कमीज का जो बाजू है ना उसको कफ तक रखें, तो हाथ की हथेली उसको कफ कहते हैं। हाथ की हथेली से दरअसल इंसान चीजों को इकट्ठा करता है, फैलाता है, फिर इसी से किसी को हथेली के साथ मारकर दूर हटाता है, रोकता है। तो इसलिए ये काफा का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए भी। और जैसे जैसे हाथ की हथेली से हटाना, रोकना, तो एक कुव्वत के लिए भी इस्तेमाल होता है, पूरे के पूरे के लिए भी होता है। जैसे हाथ की हथेली से आप पूरी चीज को रोक रहे हैं या हटा रहे हैं या ले रहे हैं, तो पूरे के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे काफा पूरे के मानी में इस्तेमाल हुआ है। आयत नंबर 209 में है जलल तुम, जे लाम लाम, और इसके मानी है लड़खा जाना, फिसल जाना, डगमगा जाना, जे लाम लाम। आयत नंबर 210 सूरत अल बकरा, इसमें लफ्ज़ है जुलालिन, जुलल, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जैसे साए के लिए, जुलल। और आप देखें कि जैसे जो है जिल्ले सुभानी, बादशाह के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता था कि उसका साया जो है वो हम पर रहे, जिल्ले सुभानी। तो इसी तरह ये लफ्ज जो है वो बादल के लिए भी, साइबान के लिए भी, खैमे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गमाम, गमाम गैन मीम मीम इसका रूट है, इसके बुनियादी मानी है किसी चीज को छुपा लेना। और अलगुमा गुबार और तारीकी को भी कहते हैं, और अलगुमाम बादल क्योंकि वो सूरज की रोशनी को ढांप लेता है। फिर गम के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब गम की कैफियत इंसान पर तारी होती है तो वो जो हिज्न और कर्ब होता है पूरे दिल पर छा जाता है, उम्मीद और कोई भी जैसे जीने की इंसान को गम की हालत में तमन्ना नहीं रहती। तुरजाऊ राजीम एन, रजा रुजू करना, लौटना। अल उमूर हमजा मीमरा, अम्र जो है ये हुक्म को भी कहते हैं, काम को भी कहते हैं, उमूर इसकी जमा है, सल जो है ये ऑर्डर का सीगा है, सीन हमजा लाम साला सवाल करना। आयत नंबर 212 यसखरूना, सीन खारा सखारा, इसके मानी है मजाक करना, मजाक उड़ाना। और ये जो मजाक होता है ये जाहिरी तौर पर उड़ाया जाता है, जैसे मस्खरापन, अब किसी की आदत का, शक्ल का, किसी की जो है वो कोई भी अंदाज है, तौर तरीके हैं, तो उनका जो है वो मजाक उड़ाना जाहिरी तौर पर। आयत नंबर 213 इसमें लफ्ज है फबासा, बा ऐन सा, बासा, इसके मानी है जो है वो भेजना, उठाना, बेसत भी इसी से है, मबूस, बेसत। आयत नंबर 214 इसमें लफ्ज है मस्सत हूं, मीम सीन सीन मस, मस के मानी है छूना, छूना। अब आप देखें के कुरान में छूने के लिए तीन लफ्ज आए हैं, इसका पहला दर्जा छूना है के मस करना, जैसे जिस्म के किसी हिस्से के साथ किसी चीज का लगना। वा अय्यूब इज नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी दुर, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी जो है वो लग गई है, छू गई है, तो मस करना। जुलजलू, इसका रूट चार हर्फी है, जे लाम जेलाम, और इसके मानी है हिलाना। और चार हर्फी जो रूट है इसके अंदर जो है जैसे हिलाने में तकरार पाई जाती है, जैसे जल जल के जलजले के झटके आते हैं ना, तो बार बार आते हैं, हिलाते हैं। और तीन हर्फी भी रूट हो सकता है, जेलाम तो यहाँ पे इसका रूट जो है वो चार हर्फी ही है, जेलाम और जेलाम। आयत नंबर 216 है कुरहुन, काफराहा कराहत, यही इसका रूट है। तकराहू का भी यही है, नागवारी नापसंदीदगी के लिए इस्तेमाल होता है। आयत नंबर 217 है, इसमें लफ्ज है सदुन, स्वाद दाल दाल, और इसके मानी है रोकना रोकना। अब आप देखें कि रोकने के लिए कुरान में कई लफ्ज आए हैं रोकना, और आप देखें कि कुरान में रोकने के लिए 15 लफ्ज आए हैं, और यहाँ पे जो रोकना है इसका छठा दर्जा है। रोकना, हटाना, बाज करना, नरम बर्ताव से रोकना, किसी को उसके कस्त और इरादे से रोकना, और नरम पॉलिसी से रोकना। अकबर, अकबरु, ये इसम तफ़ज़ील है, सुपरलेटिव डिग्री है। फिर आप देखिए कि यजालूना, यजालूना का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट है जे वोलाम जोल, और इसके मानी होते हैं जैसे हमेशा रहना, और वला यजालूना वो हमेशा नहीं रहेंगे। तो वैसे आप देखें कि जो है वो जाल जो है, अगर जा वो लाम कहें तो इसके मानी है जायल होना, जैसे किसी चीज का जो है वो हट जाना, जायल हो जाना, और अगर जब ला जाए तो जायल नहीं होगा, फिर ये हमेशगी के मानी देता है। तो यजालूना रूट है जे वोलाम जोल, इसके मानी है जायल होना, बाकी ना रहना, लेकिन जब ला जाए तो वो जायल नहीं होगा, वो बाकी रहेगा। हबतत, ये नया लफ्ज है, हा बा तो है। इसके मानी है हबतल बेरू हबता, नबतात के खाने से ऊंट का पेट फूल जाना, ऊंटनी बजाहिर फूल कर जो है वो लगता है कि बड़ी हो गई, लेकिन जब वो पेट फूला हुआ होता है ना तो वो उस वक्त वो मौत के करीब होती है, मरने के करीब होती है। तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि अमलों का बेकार हो जाना, अमलों का जाया हो जाना। वल्लाहु गफूर रहीम, जैन फारा रूट है, मानी है छुपा लेना, रहीम रहामीम रहम से है, रहम करना। अलखमरी मलमैसिर, खमर, खमर जो इसका रूट यही है खा मीम रा, इसके लफ्जी मानी होते हैं ढांप लेना, छुपा देना, और हर उस चीज को कहते हैं जो कवर कर दे, छुपा दे, खिमार, चादर को कहते हैं अरबी जबान में, ओढ़नी को कहते हैं, क्योंकि ओढ़नी जब औरत ओढ़ती है तो उससे क्या होता है, तो वो अपने आप को छुपा लेती है। इसी तरह ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है शराब के लिए, शराब जो है वो नशावर चीज जिससे जो है वो अकल पर पर्दा पड़ जाता है, वो अकल को छुपा देती है, इंसान फिर बहकी बहकी बातें करता है। क्योंकि अकल के इंसान की खत्म हो जाती है, उस पर पर्दा पड़ जाता है, कब, जब वो नशे की चीज जो है वो खबर का इस्तेमाल करता है। तो हर नशा आवर चीज को खमर कहा जाता है। दूसरा लफ्ज है वल मैसिर, मैसिर का रूट है या सीन रा, इसके मानी होते हैं अगर यूसर कहें तो आहिस्ता आहिस्ता, आसानी के लिए भी है। इसी तरह जो है वो जैसे एक तफसीर का नाम भी है तैसीरुल कुरान, है ना, आसान जैसे उसकी तफसीर है, इसी तरह जो है ये इन्ना माल उसर यूसरा, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यसर का जो लफ्ज है इसके दरअसल मानी है कि ये आसानी के हैं, और ये जुए की जुए को कहते हैं क्योंकि जुए में जो पैसे मिलते हैं ना वो कैसे मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, बहुत आसानी से, कि एकदम जो है वो अगर किसी को मिल गए तो लॉटरी निकली जुए में तो फिर आसानी से मिल गए। और इसके मानी कहते हैं तकसीम करने के भी हैं, जैसे मैसर मजदर है, मानी है तकसीम करना, यासिर कहते हैं तकसीम करने वालों को। जमाने जाहिलियत में मुख्तलिफ किस्म के अरबों के यहाँ जुए राइज थे, इनमें एक किस्म ये थी कि ऊंट जिबा करके इसके हिस्से तकसीम करने में जुआ खेलते थे, बाज को मतलब उस पर कुछ वो रख देते तीर या निशान तो जुआ खोलते, तो बाज को एक या एक से ज्यादा हिस्से मिलते, बाज बिल्कुल महरूम रह जाते। तो महरूम जो रहने वाला था ना वो उस पूरे ऊंट की कीमत अदा करता था, जिसको मिल जाता था पूरा ही मिल गया, जिसको नहीं मिला कुछ भी नहीं, जो महरूम रहा उसने पूरे ऊंट की कीमत अदा करनी है। और गोश्त सब फुकरा में तकसीम किया जाता, वो खुद उसको इस्तेमाल ना करते। तो तकसीम की मुनासबत से कमार को जुए को भी मैसर कहा जाता है। तो मैसर में जुए की तमाम शक्लें दाखिल हैं। आयत नंबर 220 है और इसमें लफ्ज है तुखालितुहुम, खाल आम तो है खलत मलत। तो खलत लफ्ज तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना, ये तो कोई नया लफ्ज नहीं है। आप कहती हैं कि इख्तलात नहीं होना चाहिए, कोई आपस में जो है वो मिलावट ना हो, मर्दों के औरतों के आपस में अगर वो मिले जुले तो मिक्सिंग हो जाए तब भी ये लफ्ज बोला जाता है, और इसी तरह वैसे भी मिलाने के लिए आता है, जैसे खलता मिलाना, खुलता शरीक के लिए आता है, इख्तलात उर्दू में भी कहते हैं इख्तलात मर्द वजन हराम है, जायज नहीं है कि मर्द औरतें आपस में मिक्सअप हो जाएं। तो खलता वैन तो खालितु हूं, और अगर तुम मिला दो इनके साथ, यहाँ पे यतीमों की बात है। यहाँ पे एक अहम लफ्ज है लआनतकुम, लआनतकुम इसका रूट है आयन नून ता, आयन नून ता, इसके मानी होते हैं तकलीफ उठाना, मुशक्कत में पड़ना, तकलीफ उठाना मुशक्कत में पड़ना। अब आप देखें कि तकलीफ के लिए भी हमें बहुत से अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं, और उनमें से एक लफ्ज है अनादा, ऐसी तकलीफ पाना जिसमें हिलाकत का अंदेशा हो, इंतहाई तकलीफ को कहते हैं अनादा। जैसे तकलीफ के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं ना, तो अनादा इसका 6ठा दर्जा है। इसमें एक बात आप और याद रखें कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे मामले में फंस जाए जिसमें अब उसके मरने का अंदेशा हो जाए, उसकी जान के तल्फ हो जाने का अंदेशा हो, तो उस वक्त भी ये लफ्ज बोला जाता है। ये लफ्ज कुरान में कई दफा आता है। अच्छा, जैसे मसलन कहते हैं कि अगर कोई हड्डी है उसको जोड़ लिया जाए, अब जुड़ी हुई जो हड्डी है अगर उसको जब भी कोई सदमा पहुंचेगा तो दोबारा क्या होगा, वो तो टूट जाएगी ना, तो ऐसे मौके पे भी वो ये लफ्ज बोलते थे। जैसे एक पहले ही जख्म है उसको हड्डी को जोड़ा गया और जब भी कोई सदमा नुकसान उसको पहुंचेगा फिर तो वो टूट जाएगी, तो इस तरह ये लफ्ज ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है तकलीफ में मुबतला होने।